नमस्ते दोस्तों, एक बार मैं फिर उपस्थित हूँ विवेकानंद हिंदी पेपर 8 आधुनिक भाषा विज्ञान को लेकर के। इस बार हम लोगों का चैप्टर रहेगा लिपि विज्ञान। लिपि विज्ञान पहली हेडलाइन है, लिपि का स्वरूप। यह निर्विवाद सत्य है कि भाषा के विकास के बाद ही लिपि का विकास हुआ। प्रारंभ में मानव को आज जैसी सुविधाएं प्राप्त नहीं थी, फिर भी उसे जैसे जैसे अपने भावों और विचारों को सुरक्षित रखने अथवा स्थिर बनाने की आवश्यकता महसूस हुई, वह कुछ न कुछ आविष्कार करता रहा। बहुत कुछ क्षेत्रों में उसे सफलता भी मिली। लिपि ने उसके मुख से निकली हुई ध्वनियों को यथा रूपायित ही नहीं किया, बल्कि विचारों की अभिव्यक्ति को स्थिरता प्रदान की और भावी संतति के लिए अपने मनोभावों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया। अतः लिपि लेखन पद्धति की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा भाषा को स्थायित्व प्रदान किया जाता है तथा व्यक्त वाणी को सुदीर्घ काल तक सुरक्षित रखा जाता है। दूसरी हेडलाइन है, भारत में लिपि का विकास। पाश्चात्य विद्वानों की धारणा है कि भारत में लिपि का विकास सम्राट अशोक के एकाध शताब्दी पूर्व हुआ था। बर्नेल का कहना है कि भारत ने ईसा से चौथी या पांचवी शताब्दी पूर्व फिनिक जाति के लोगों से लेखन कला सीखी थी। डॉक्टर बुलर की मान्यता है कि 500 ईसा पूर्व भारतवासियों ने सीमा लिपि के आधार पर ब्राह्मी लिपि का निर्माण किया था। यह कथन आम प्रचलित पाया जाता है कि ह्वेनसांग कोष्ट में 630 से 644 ईस्वी भारत से लगभग 650 पुस्तकें 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया था। प्रश्न उठता है, क्या इतनी पुस्तकें उस समय थी जो एक ही युग में लिखी गई थी? मेगास्थनीज कोष्ट में 4 थी ईस्वी पूर्व का मत है कि भारत में लोग जन्मपत्रियां बनाते थे और प्रस्तर फलकों पर खोद कर लिखा करते थे। इन सबके बावजूद भी मैक्स मूलर साफ साफ इनकार कर जाते हैं कि ईस्वी सन से पूर्व भारत में किसी लिपि का विकास हुआ था। सिकंदर के नौ सेनापति नियॉर्कस ने लिखा है कि भारतवासी रुई के कपड़े या कागज पर अक्षर अंकित किया करते थे। इधर कुछ नवीन तथ्यों से पता चलता है कि भारत की लिपि बहुत कुछ अंशों में प्राचीन है। कपिल वस्तु के समीप पिपरावा कोट जिला अजमेर में बरेली और जरासंध की राजधानी गिरिब्रज नामक स्थानों पर प्राप्त शिलालेख भारतीय लिपि की प्राचीनता के प्रमाण है। ये लेख ईसा से 500 से 600 पूर्व के हैं। दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय से प्राप्त ताम्रपत्र एवं प्रस्तर खंड भी इसी बात की ओर संकेत करते हैं। यदि हम भारतीय वांगम्य पर विचार करते हैं तो यह बात और स्पष्ट हो जाती है। जैसे ऋग्वेद के छठे मंडल के 53वीं सूक्त की 7वीं ऋचा में एक शब्द आरिक आया है जो विद्वानों के विचार से आलेख अर्थात लिपि का ही परिवर्तित रूप है और यह सूचित करता है कि रेखाओं से ही लेखन का श्री गणेश हुआ था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में भी यह बात देखने को मिलती है। दृश्य शब्द का प्रयोग लिपि के ही संदर्भ में हुआ है। शुक्ल यजुर्वेद में छुरो ब्रश छन्न पद मिलता है जिसका अर्थ है विलेखन या खनन द्वारा विराजमान छंद अर्थात अक्षरबद्ध छंद। लेखन कला की ओर यह शब्द भी संकेत कर रहा है। अथर्ववेद में लिखा है कि क स्वाम करकरी आलिखित अर्थात इन पूरा लेखों को किसने लिखा। इतरी ब्राह्मण में भी छंदों के अक्षरों का विश्लेषण मिलता है जो वर्णमाला के विकास का सूचक है। संहिता शब्द भी यही सूचित करता है कि लिखित पाठों का ही संग्रह किया गया होगा, क्योंकि कथ्य भाषा का संग्रह कैसे हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि लिपि के विकास का सोपान वैदिक साहित्य से पूर्व ही किसी रूप में रहा होगा। वाल्मीकि रामायण में यदि इस बात की खोज करें तो और भी स्पष्ट रूप दिखाई देता है। सुंदरकांड में हनुमान सीता को विश्वास दिलाने के लिए राम नाम अंकित अंगूठी देते हुए कहते हैं, राम नाम मांकित अच्छेद पश्य देव्यम गुलियकम अर्थात हे देवी यह अंगूठी लो और देखो इस पर राम का नाम लिखा है। इससे स्पष्ट है कि रामायण काल में पुरुषों को ही नहीं अपितु नारियों को भी लिपि का ज्ञान था। महाभारत के शांति पर्व में भी इससे संबंधित कुछ सामग्री मिलती है। उसमें लिखा है कि धार्यते ही त्वया ग्रंथ उभयोर्वेद शास्त्रई, अर्थात तुमने तो वेद और धर्मशास्त्र दोनों ही पढ़े हैं। इससे स्पष्ट है कि इन ग्रंथों के पूर्व लिपि का विकास हो चुका था, क्योंकि बिना लिपि के पढ़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। कि उदंती रूप में यह भी प्रचलित है कि महर्षि वेदव्यास ने तेज आंसु लिपि गणेश से महाभारत लिखवाया था। इसके अतिरिक्त यास्क मुनि ने निरुक्त में लिखा है कि मंत्रों का शिक्षा ग्रंथतः और अर्थतः दी जाती थी। पाणिनि ने भी लिपि ग्रंथ वर्ण लिपिक लिपिकर अक्षर आदि शब्दों का प्रयोग अपनी अष्टाध्यायी में किया है। संस्कृत ग्रंथों के अतिरिक्त बौद्ध जातक कथाओं में भी इस प्रकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं, जो साफ साफ यह जाहिर करते हैं कि उस समय स्वर्ण पत्रों पर अंकित खुदवाए जाते थे, स्वर्ण पत्रों पर अक्षर खुदवाए जाते थे, राजकीय पत्र एवं ऋण पत्र लिखे जाते थे। बौद्धों के विनय पिटक में लेखन कला की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। जैनियों के समवाय सूत्र में भारत की 18 लिपियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से ब्राह्मी यवनानी खरोष्टिका द्राविड़ी उल्लेखनीय है। भारत की प्राचीन लिपियां, तीसरी हेडलाइन है भारत की प्राचीन लिपियां। भारत के प्राचीन शिलालेखों और सिक्कों का अध्ययन करने के बाद यही ज्ञात होता है कि भारत में पहले दो लिपियां मुख्यतया प्रचलित थी, जो क्रमशः इस प्रकार है, ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। किंतु यदि भारतीय ग्रंथों में खोजा जाए तो इनकी संख्या अनगिनत मिलती है। जैन धर्म के पनवाड़ा सूत्र में 18 लिपियों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ ललित बिस्तर में इसी 64 लिपियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें ब्राह्मी खरोष्टी अंगटालिपि द्राविड़ी लिपि आदि प्रमुख है। किंतु खेद है कि अभी तक दो ही लिपियों का पता चल पाया है। शेष लिपियों के बारे में कोई सामग्री न मिल पाने के कारण इन्हें केवल कल्पना का स्रोत मान लिया जाता है। ब्राह्मी लिपि के बारे में तो यह सिद्ध हो चुका है कि यह भारतीय लिपि ही है। जहां तक खरोष्टी लिपि का सवाल है वह विवादास्पद है। डॉक्टर राजबली पांडे का मत है कि खरोष्टी लिपि भारत की उपज है। इसका ज्यादा प्रयोग धार्मिक एवं साहित्यिक विषयों में न होकर व्यापारिक कामकाज में होता था। भारतवासी पश्चिमी एशिया के लोगों के साथ अधिकतर वाणिज्य व्यापार में इसी लिपि का प्रयोग करते थे, परंतु डॉक्टर बुलर, डॉक्टर गिरिधर, डॉक्टर गौरीशंकर, हीराचंद ओझा इस लिपि को भारतीय उपज नहीं स्वीकार करते। ये लोग इसे अर्मेइका लिपि से विकसित मानते हैं, परंतु खरोष्टी लिपि में लिखित लेख भारत में भी प्राप्त हुए हैं। इस तरह भारत में लिपियों के विकास की यदि सारणी बनाई जाए तो तीन लिपियां सामने नजर आती हैं। पहली सिंधु घाटी की लिपि, दूसरी खरोष्टी लिपि, तीसरी ब्राह्मी लिपि। सिंधु घाटी की लिपि का जिक्र पहले किया जा चुका है, इसलिए यहाँ पहले दो का ही वर्णन किया जाएगा। इस प्रकार हम आते हैं पहली लिपि खरोष्टी लिपि पर। खरोष्टी लिपि के प्राचीनतम लेख सहबाजगढ़ी और मनसेहरा में मिले हैं, जो अशोककालीन प्रतीत होते हैं। इसे अन्य नामों से भी, जैसे इंडो पैक्तियन, काबुलियन, वैक्ट्रोपाल, आर्यन आदि नामों से संबोधित किया जाता है, पर ज्यादा प्रचलित नाम खरोष्टी ही है। इस लिपि के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित हैं। कुछ विद्वान इसे भारतीय सिद्ध करते हैं और कुछ विदेशी। विदेशी मानने वालों की धारणा है कि पहली खरोष्टी लिपि आर्मेइक लिपि की तरह दाएं से बाएं लिखी जाती है। दूसरी कार्डवेल, भंडारकर आदि इतिहासकारों का कहना है कि खरोष्टी का विकास आर्मेइक या सीरियाई लिपि से हुआ है, जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व समस्त हमखानी साम्राज्य की राजलिपि थी और जिसका प्रयोग मिस्र से हिंदुस्तान तक होता था। तीसरा गौरीचंद हीराचंद ओझा तथा डॉक्टर डिरिंजर का भी यह कहना है कि खरोष्ठी का संबंध अरमेइक लिपि से है और अरमेइक लिपि विदेशी है, तो खरोष्ठी भारतीय लिपि नहीं है। इसके विपरीत इसे भारतीय लिपि सिद्ध करने वाले विद्वानों के विचार इस प्रकार हैं। पहला, डॉक्टर राजबली पांडे ने इंडियन पैलोग्राफी नामक पुस्तक में लिखा है कि खरोष्ठी एक भारतीय लिपि है। दूसरा, कुछ विद्वानों के अनुसार खरोष्ठी लिपि के निर्माता एक भारतीय ऋषि थे। तीसरा, कतिपय विद्वान यह सिद्ध करते हैं कि यह लिपि भारतीय सीमा प्रांत के अर्ध सभ्य लोगों के नाम पर विकसित हुई थी, उनके खर जैसे ओष्ठ होते थे और इसी आधार पर इसे खरोष्ठी कहते थे। खरोष्ठी लिपि का नामकरण, यह हेडलाइन है इसमें। पहला है, इसके नामकरण के पीछे बड़ा विवाद है। चीनी विश्वकोश फा वान सू लिन के अनुसार किसी खरोष्ठ नामक व्यक्ति ने इसे बनाया था। दूसरा है, इस लिपि का केंद्र कभी मध्य एशिया का एक प्रांत कासगर था। खरोष्ठ कासगर का ही संस्कृत रूप है। तीसरा है, डॉक्टर प्राजिलुस्की का मत है कि यह लिपि प्रारंभ में गद्धे की खाल पर लिखी जाती थी, इसलिए इसे पहले खर पृष्ठी कहते थे, किंतु पीछे यही नाम बिगड़कर खरोष्ठी हो गया। डॉक्टर राजबली पांडे ने इसे खर के ओष्ठ अर्थात गद्धे के ओठों के समान होने के कारण खरोष्ठी कहा है। डॉक्टर चटर्जी के अनुसार हिब्बू में खरोष शोध का अर्थ लिखावट है, उसी से लिखे जाने के कारण इसका नाम खरोशोध पड़ा, जिसका संस्कृत रूप खरोष्ट और उससे बना शब्द खरोष्ठी है। किंतु ये सभी प्राप्त मत केवल कल्पना पर आधारित है, अतएव इस संबंध में स्पष्ट रूप से कुछ कहना कठिन और असंभव है। खरोष्ठी लिपि अरबी लिपि की तरह पहले दाएं से बाएं लिखी जाती थी, परंतु बाद में संभवतः ब्राह्मी लिपि के प्रभाव से बाएं से दाएं लिखी जाने लगी। इस लिपि में मूलतः स्वरों का अभाव था। वृत्त रेखा या अन्य चिन्हों द्वारा जो स्वरों का उल्लेख मिलता है उस पर स्पष्ट रूप से ब्राह्मी लिपि का प्रभाव परिलक्षित होता है। जो भी हो, इतना तो कहा ही जा सकता है कि खरोष्ठी लिपि एक आरंभिक लिपि है जो न तो वैज्ञानिक है और न सर्वथा पूर्ण। इसे यदि काम चलाऊ लिपि के रूप में स्वीकार कर लिया जाए तो ज्यादा उचित होगा। इसमें वर्णों की संख्या लगभग 37 है। इस लिपि में दीर्घ स्वरों के चिन्ह नहीं मिलते, मात्राओं और संयुक्त स्वरों का भी एकदम अभाव है। खरोष्ठी लिपि के अक्षर यहाँ प्रस्तुत है। पहचान के लिए इनके प्रारंभ में नागरिक अक्षर दिए गए हैं। सॉरी दोस्तों, मैं उन अक्षरों को नहीं पढ़ सकता क्योंकि उनको पढ़ना हमारे लिए तो लगभग असंभव ही है। अब हम आते हैं ब्राह्मी लिपि पर। ब्राह्मी भारत की सबसे प्राचीन लिपि है। कोई इसे भारतीय मानते हैं, कोई विदेशी। भारतीय मानने वालों की मान्यताएं इस प्रकार है। पहला, कनिंघम, लाओसन, थॉमस डायसन आदि विद्वानों का विचार है कि आर्यों ने ही किसी पुरानी लिपि के आधार पर इस ब्राह्मी लिपि का विकास किया था। दूसरा, डॉक्टर गौरीचंद हीराचंद ओझा के अनुसार यह लिपि हमें अत्यंत प्रौढ़ावस्था में मिली। तीसरा, ब्राह्मी लिपि के कुछ चिन्ह सिंधु घाटी के लिपि से मिलने के कारण डॉक्टर राजबली पांडे की मान्यता है कि इस लिपि का विकास सिंधु घाटी की लिपि से हुआ। चौथा, ब्राह्मी का अर्थ है वैदिकी, अतः कुछ विद्वानों का विचार है कि ब्राह्मी लिपि का विकास वैदिक काल की आर्य लिपि से हुआ था। अलवर्नी ने लिखा भी है कि हिंदुओं की वर्णमाला पहले विलुप्त हो गई थी, बाद में व्यास पराशर ने 50 वर्णों की वर्णमाला खोज निकाली, यही ब्राह्मी लिपि की वर्णमाला थी। व्यास का संबंध वेदों से भी रहा है और वेदपीठ तथा ब्रह्मावर्त से भी। वेदों का संपादन सारस्वत ब्रह्मा प्रदेश में ही हुआ था, अतः यह वैदिक लिपि ही है। पांचवा, कुछ विद्वान इस लिपि की उत्पत्ति ब्रह्मा से भी मानते हैं। चीनी विश्वकोश फावान सुलिन में इस लिपि के प्रवर्तक ब्रह्मा नाम के कोई आचार्य बतलाए गए हैं। छठवा, कुछ लोग साक्षर समाज ब्राह्मणों के प्रयोग में विशेष रूप से होने के कारण भी इसकी ब्राह्मी नाम से पुकारे जाने का अनुमान लगाते हैं। सातवा, ईसवी सन से पूर्व में प्रचलित होने के कारण इसके प्राचीनतम नमूने पिपरा आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इन शिलालेखों से यह अनुमान लगता है कि यह अत्यंत प्राचीन एवं भारतीय लिपि है। अठवा, जगमोहन वर्मा ने सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित अपनी लेखमाला के अंतर्गत सिद्ध किया है कि इस ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति वैदिक चित्रलिपि से हुई थी। सिंधु घाटी ब्राह्मी एवं नागरी लिपि में पर्याप्त समानता होने के कारण इस धारणा को बल मिलता है कि भारतीय लिपि विकास का यह क्रमिक सोपान है। यह समानता कतिपय उदाहरणों के साथ क्रमशः प्रस्तुत है। इस खोज का निष्कर्ष यही है कि ब्राह्मी की उत्पत्ति भारत में हुई। इसके विपरीत, पहला, फ्रेंच विद्वान कुपेरी ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति चीनी लिपि से मानते हैं, जबकि दूसरा, डॉक्टर अल्फ्रेड मूलर, जेम्स प्रिंसेप तथा सेनाट आदि ने यूनानी लिपि से ब्राह्मी को उत्पन्न माना है। सेनाट के अनुसार सिकंदर के आक्रमण के समय भारतीयों ने यूनानियों से लिखने की कला सीखी। तीसरा, डॉक्टर बुलर का मत है कि भारत की प्राचीनतम लिपि तो सिंधु घाटी की लिपि है जो ब्राह्मी से मेल नहीं खाती, अतः ब्राह्मी लिपि का इससे विकसित होना एकदम असंभव मालूम पड़ता है। संभवतः इसका विकास सेमेटिक लिपि से हुआ है। बेवर क्रस्ट इसे सामी से, डिरिंजर उत्तरी सीमी से, टेलर केनन सेथ डीके दक्षिणी सामी से, जेंसन और बेनफ फिनिश से, डॉक्टर आर एस शाह अरबी से और एडवर्ड थॉमस द्रविण से ब्राह्मी लिपि का विकास मानते हैं, किंतु यह अवधारणा सही नहीं। वस्तुतः प्राचीन काल में ही वैदिक साहित्य की रक्षा के लिए भारतीय ऋषियों मुनियों ने इसे बनाया था, जिन्होंने ध्वनि शास्त्र, व्याकरण, शब्द विज्ञान, वेद पाठ पद्धति आदि का आविष्कार किया था, इस लिपि का निर्माण किया। ब्राह्मी लिपि का विकासात्मक स्वरूप निम्नलिखित है। हेडलाइन है, ब्राह्मी लिपि का विकास। ब्राह्मी लिपि के संबंध में जो सबसे प्राचीन सामग्री मिलती है वह 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक की ही है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 350 ईसा पूर्व तक इसका एक रूप मिलता है। बाद में यह दो धाराओं में विभक्त हो गई, जो उत्तरी धारा एवं दक्षिणी धारा के नाम से संबोधित हुई। वस्तुतः ब्राह्मी ही वह लिपि है जो समस्त भारतीय लिपियों की जननी है। क, उत्तरी धारा। यह धारा मुख्य रूप से उत्तरी भारत में प्रचलित रही। यह लिपि बाद में फिर चार रूपों में विभक्त हो गई। पहली गुप्त लिपि, दूसरी कुटिल लिपि, तीसरी शारदा लिपि और चौथी प्राचीन नागरी लिपि। पहली गुप्त लिपि, हेडलाइन है, गुप्त वंश के शासनकाल में विकसित होने के कारण इस लिपि का नाम गुप्त लिपि पड़ा। यह लिपि ईसा की चौथी और पांचवीं शताब्दी में प्रचलित हुई थी। गुप्त राजाओं के लेख इसी लिपि में प्राप्त होते हैं। दूसरी है कुटिल लिपि। यह लिपि गुप्त लिपि का ही विकसित दूसरा रूप है। इसमें अक्षर टेढ़े होते थे, विद्वानों ने शायद इसलिए इसका नाम कुटिल लिपि रखा। उत्तरी भारत में छठी शताब्दी से लेकर नौवीं शताब्दी तक यह विशेष प्रचलित थी। तीसरी है शारदा लिपि। कश्मीर की अधिष्ठाती देवी शारदा के नाम पर इसका नाम शारदा लिपि रखा गया। यह ईसा की 10वीं शताब्दी तक विकसित हुई थी। कश्मीरी, टकड़ी, लंडा, गुरुमुखी, डोगरी, चमे आली तथा कच्छी लिपियां इसी लिपि की उपज है। शारदा लिपि मुख्यतः कुटी लिपि का विकसित दूसरा रूप है। चौथा, प्राचीन नागरी लिपि। इस लिपि का भी विकास कुटी लिपि से ही हुआ है। ईसा की 9वीं शताब्दी में यह अधिक प्रचलित थी। दक्षिण भारत में इसे नंद नागरी के नाम से भी पुकारा जाता था। आधुनिक युग की देवनागरी गुजराती, महाजनी, मैथिली, कैथी, राजस्थानी, महाराष्ट्रीय, बंगला आदि लिपियाँ इसी से विकसित हुई हैं। इसका प्रचार कुछ रूपों में 16वीं शताब्दी तक मिलता है। ख है दक्षिणी धारा। दक्षिणी भारत में इस लिपि का विकास होने के कारण इसे दक्षिणी धारा के नाम से संबोधित करते हैं। इस धारा के अंतर्गत 6 लिपियाँ विकसित हैं, तेलुगु, कन्नड़, ग्रंथ, तमिल, कलिंग, मध्यदेशी और पश्चिमी लिपि। पहली हेडलाइन है तेलुगु कन्नड़ लिपि। यह लिपि ईसा की 5वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक दक्षिणी भारत में प्रचलित रही। प्रचार क्षेत्र आंध्र का दक्षिणी भाग, तमिलनाडु का उत्तरी पूर्वी भाग तथा कर्नाटक था। 14वीं शताब्दी के पश्चात आधुनिक तेलुगु एवं कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ। दूसरी है ग्रंथ लिपि। इस लिपि का विकास भी दक्षिणी धारा से हुआ था। संस्कृत ग्रंथों में इसका अधिकतर उपयोग होता था क्योंकि इस लिपि का प्रचार तमिलनाडु में हुआ था और वहाँ की तमिल लिपि अपूर्ण थी। ईसा की 7वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक यह लिपि प्रचलित रही। तीसरी है तमिल लिपि। इस लिपि का विकास ईसा की 7वीं शताब्दी में ही होना शुरू हो गया था। ग्रंथ लिपि और इस लिपि में काफ़ी समानता मालूम पड़ती है। इसके क और र व्यंजन ब्राह्मी लिपि की उत्तरी धारा से गए हुए प्रतीत होते हैं। वर्तमान तमिल लिपि का विकास इसी से हुआ है। चौथा कलिंग लिपि। कलिंग में खास तौर पर प्रचलित होने के कारण इसका नाम कलिंग लिपि पड़ गया। मध्य देशी पश्चिमी ग्रंथ तेलुगु कन्नड़ी नागरी आदि लिपियों का भी प्रभाव बराबर इस लिपि पर पड़ता रहा। पांचवा मध्य देशी लिपि। दक्षिणी धारा से विकसित होते हुए भी यह लिपि उत्तरी धारा से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश बुंदेलखंड हैदराबाद आदि क्षेत्रों में यह ईसा की 5वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक विकसित रही। इसके अक्षर चौखटे अथवा संदूक की आकृति के होते थे। छठवां पश्चिमी लिपि। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है यह लिपि पश्चिमी क्षेत्रों की थी। गुजरात काठियावाड़ नासिक खानदेश सतारा जिला हैदराबाद तथा मैसूर के कुछ भाग इस लिपि के मुख्य केंद्र स्थल थे। नया हेडलाइन है देवनागरी लिपि। इससे संबंधित क नामकरण। ब्राह्मी लिपि से विकसित नागरी लिपि से ही देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। इसके नामकरण के बारे में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। कुछ महत्वपूर्ण विचारधाराएं इस प्रकार हैं। पहली, कुछ विद्वानों का विचार है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों में इसका सबसे ज्यादा प्रचार था, इसलिए इसका नाम देवनागरी पड़ा। दूसरा, कुछ विद्वान बौद्ध ग्रंथ ललित बिस्तर में उल्लिखित नागरी लिपि से इसका संबंध बताते हैं। तीसरा, नगरों में प्रचलित होने के कारण इस लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। चौथा, देवनागर लिपि चिन्हों से विकसित होने के कारण इसका नाम देवनागरी पड़ा। पांचवा, पाटलिपुत्र को नागर और चंद्रगुप्त द्वितीय को देव कहा जाता था, उन्हीं के नाम पर इस लिपि का देवनागरी नामकरण किया गया। छठवा, कुछ विद्वानों का विचार है कि काशी को पहले देवनगर कहा जाता था। काशी में इसका सर्वाधिक प्रचार होने के कारण अथवा काशी विद्या का केंद्र होने के कारण उसी देवनगर के नाम के आधार पर इस लिपि का नाम देवनागरी पड़ गया। जैसे दक्षिण में नंदनगर के आधार पर नंदी नागरी लिपि नाम पड़ा है। सातवां, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का मत है कि मध्ययुग के स्थापत्य की एक शैली का नाम नागर था जिसमें चौकोर आकृतियाँ होती थी। इस नागरी लिपि के अधिकांश अक्षर भी चौकोर होते हैं। इसी आधार पर इसे नागरी या सम्मान देने के लिए देवनागरी लिपि कहा गया है। उक्त सभी मतों में से कौन सा मत अधिकतर संगत है इसे स्पष्ट कर पाना एकदम कठिन तथा असंभव है, किंतु इतना तो जरूर है कि जिस प्रकार श्रेष्ठ बांगम्य वाली भाषा संस्कृत को परिष्कृत एवं परिमार्जित होने के कारण देववाणी कहा जाता है, उसी तरह संस्कृत वांगम्य लिपिबद्ध करने के कारण इस परिष्कृत एवं परिमार्जित नागरी लिपि को देवनागरी नाम दिया गया है। मेरी अपनी दृष्टि में वस्तुतः नागर का अर्थ है सभ्य अर्थात नगर में रहने वाला, सभ्य श्रेष्ठ देवता की मान्यता रखता है। इस प्रकार देवनागर वह श्रेष्ठ देवता सदृश व्यक्ति है जो सभ्यता से परिचित है और उसके द्वारा प्रयुक्त लिपि देवनागरी कहलाई। ख हेडिंग है विकास। देवनागरी लिपि का विकास निश्चित रूप से कब और कैसे हुआ यह आज भी विवाद का विषय है। इस लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के नरेश जय भट्ट के एक शिलालेख में मिलता है जो लगभग 700 से 800 ईस्वी के मध्य का है। 8वीं और 9वीं शताब्दी में क्रमशः राष्ट्रकूट नरेशों एवं बड़ौदा के ध्रुवराज ने अपने देश में इस लिपि का प्रयोग किया था। विजयनगर और कोंकण भी इसके विकास के महत्वपूर्ण स्थान रहे हैं। इसी मत के आधार पर कतिपय विद्वानों की यह मान्यता है कि सर्वप्रथम इसका विकास दक्षिण में हुआ और उसके अनंतर उत्तर में भी। ईसा की 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक देवनागरी लिपि मेवाड़ के गुहेलवंशी राजा, मारवाड़ के परिहार राजा, मध्य प्रदेश के हय वंशी राजा राठौर और कलचूरी नरेशों, कन्नौज के गहरवाल और गुजरात के सोलंकी राजाओं में पर्याप्त मात्रा में प्रचलित रही। वैसे यह लिपि भारत के सभी क्षेत्रों में विकसित रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात आदि प्रांतों में उपलब्ध शिलालेख, हस्तलेख, प्राचीन ग्रंथ आदि में देवनागरी लिपि की ही अधिक मिलती है। आज तो संपूर्ण हिंदी क्षेत्र की एकमात्र अधिष्ठाती बनी हुई है। महाराष्ट्र में इस लिपि को बालबोध के नाम से जाना जाता है। बालबोध के कतपीय वर्ण अ, छ, झ, ल, क और त अब व्यापक रूप से देवनागरी लिपि के अंग बन गए हैं। अरब में इस लिपि के वर्णों पर शिरोरेखा नहीं थी। अ, ध, म, य, स और र के सिर दो भागों में विभक्त थे। 10वीं शताब्दी की देवनागरी लिपि के अनेक वर्ण आधुनिक वर्णों से बहुत पृथक थे। सुंदर बनाने के उद्देश्य से इन्हें धीरे धीरे सुधारा जाता रहा। 14वीं शताब्दी तक आते जाते बहुत कुछ कमियां दूर हो गई। आधुनिक विकसित रूप इसी मेहनत और विकास का प्रतिफल है। देवनागरी के स्वरों और व्यंजनों का विकास अगले पृष्ठ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। हेडलाइन है, देवनागरी लिपि पर अन्य लिपियों का प्रभाव। देवनागरी लिपि में अन्य लिपियों के प्रभाव से कुछ परिवर्तन भी हुए हैं। उदाहरणार्थ, पहले देवनागरी लिपि में जिह्वामूली ध्वनियों को अंकित करने के लिए चिन्ह न थे, परंतु भारसी के प्रभाव से इन वर्णों के नीचे बिंदु लगाकर इन ध्वनियों को व्यक्त किया जाने लगा। यथा क, ख, ग, ज, ज, फ आदि। मराठी से इसने अ, झ रूप लिए। बंगला लिपि से इसने वर्णों को चौकोर के स्थान पर गोल किया। रोमन लिपि से इसने अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयकारी बोधक, उदाहरण चित्र तो लिए ही साथ ही जीरो के लिए डॉक्टर, अर्ध विवृत ए के लिए ए चिन्ह प्रस्तुत होने लगे और पूर्ण विराम के लिए विद्यमान पूर्ण चिन्ह के साथ साथ फुल स्टॉप का भी प्रयोग शुरू हो गया। घ हेडलाइन है, देवनागरी के अंकों का विकास। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अंकों के चिन्ह का विकास सर्वप्रथम भारत में ही हुआ। संसार की अरबी, फारसी जैसी अन्य प्राचीन भाषाओं में ये चिन्ह भारत से ही गए। वैदिक साहित्य में प्राप्त ज्योतिष गणना पद्धति भी इस मत को बल देती है। अंकों के चिन्हों का विकास प्रारंभ में प्रचलित रेखा पद्धति से माना जाता है। कुछ इसे अंकबोधक शब्दों से विकसित मानते हैं, पर मानव प्रकृति विकास संबंधी पहली धारणा को ही पुष्ट करती है। नवीन अंक चिन्ह 5वीं ईस्वी तक विकसित हो गए थे। देवनागरी शून्य चिन्ह इस लिपि के परिवर्तित विकास का परिणाम है। इसमें बहुत सरलता आ गई। अंकों के विकास की संपूर्ण स्थिति निम्नलिखित चित्र के माध्यम से प्रस्तुत है। अंग हेडलाइन है, देवनागरी लिपि के गुण दोष। यह निर्विवाद है कि देवनागरी संसार की श्रेष्ठ लिपियों में से एक है। यह ध्वन्यात्मक लिपि है और इसमें अक्षरात्मक एवं वर्णनात्मक लिपियों की विशेषताएं पाई जाती हैं। पहली, देवनागरी लिपि के गुण, विशेषताएं और वैज्ञानिकता। पहला, यह एक व्यवस्थित ढंग से निर्मित लिपि है। दूसरा, ध्वनियों का क्रम वैज्ञानिक है। स्पर्श ध्वनियों के वर्णन में प्रथम वर्ग कंठ ध्वनियों का है और अंतिम वर्ग ओष्ठ ध्वनियों का। हर वर्ग में अल्प प्राण ध्वनि के बाद महाप्राण ध्वनि सूचक चिन्ह हैं, यथा क, ख, ग, घ आदि। तीसरा, प्रत्येक वर्ग की ध्वनियों में पहले अघोष ध्वनियां हैं और फिर सघोष। प्रत्येक वर्ग की प्रथम दो ध्वनियां अघोष हैं और अंतिम तीन ध्वनियां सघोष, यथा क वर्ग के अंतिम तीन ध्वनियां क, सॉरी ग, घ, अंग, च वर्ग की अंतिम तीन ध्वनियां ज, झ, या आदि। चौथा, प्रत्येक वर्ग के नासिक ध्वनि अंग, अण, न, म उस वर्ग के अंत में है। पांचवा अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों के लिए तथा सघोष एवं अघोष के लिए अलग लिपि चिन्ह है, जैसे क ख ग घ अंग। छठवा छपाई एवं लिखाई के लिए एक ही रूप है, जबकि रोमन लिपि में छोटे और बड़े दो रूप छपाई के हैं और दो लेखन के लिए हैं। सातवां स्वरों में ह्रस्व एवं दीर्घ का भेद है तथा स्वरों की मात्राएं निश्चित है। आठवां प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग लिपि चिन्ह है। नौवां एक लिपि के लिए एक ही लिपि चिन्ह है, जबकि रोमन में एक ध्वनि के लिए एक से अधिक लिपि चिन्ह प्रयुक्त होते हैं, यथा क सूचक ध्वनि के लिए के एवं सी। दसवां एक लिपि चिन्ह से सदा एक ही ध्वनि अभिव्यक्त होती है, रोमन में एक लिपि चिन्ह से एक से अधिक ध्वनियों की अभिव्यक्ति होती है, यथा सी से क एवं स ध्वनियों का बोध होता है, सी एटिकेट सी ई एन टी सेंट। ग्यारहवां उच्चारण एवं प्रयोग में समानता है, रोमन में ऐसा नहीं है, यथा उच्चारण एवं प्रयोग यथा उच्चारण एच प्रयोग ह। बारहवां केवल उच्चारित ध्वनियों के लिपि चिन्ह है, इसके विपरीत रोमन में उच्चारित ध्वनियों के भी लिपि चिन्ह है, यथा वाक टाक में ल का उच्चारण नहीं होता किंतु लेखन में एल का प्रयोग होता है। तेरहवां देवनागरी में जो लिखा जाता है वही उच्चारित होता है, परंतु रोमन में कतिपय ध्वनियों का विपरीत उच्चारण भी होता है, यथा बट और पुट। यहाँ यू दोनों में है किंतु एक जगह इसका उच्चारण अ है और दूसरी जगह उ, यह असमानता देवनागरी में नहीं है। चौदहवां देवनागरी में 10 स्वर चिन्ह, 33 व्यंजन चिन्ह, एक अनुस्वार, एक अनुनासिक एवं विसर्ग का चिन्ह इसकी संपन्नता के प्रमाण है, जिनमें किसी भी भाषा के ध्वनियों के अंकन की क्षमता है। देवनागरी लिपि के दोष, क्वेश्चन में त्रुटियां या अवैज्ञानिकता। देवनागरी में जहां अनेक गुण हैं वहीं अवैज्ञानिकता, शीघ्र लेखन, मुद्रण तथा टंकन आदि की दृष्टि से कुछ दोष अथवा त्रुटियां भी हैं। पहली त्रुटि है यह पूर्ण वर्णात्मक लिपि नहीं है। इसलिए इसके वैज्ञानिक विश्लेषण में कठिनाई उत्पन्न होती है। इसकी लिखावट समय साध्य है, इसलिए शीघ्र लेखन, मुद्रण एवं टंकन के लिए बहुत उपयुक्त नहीं मानी जाती। दूसरा लिपि चिन्हों में अनेक रूपता भी है, यथा अ अ अण अण झ झ ल ल। तीसरा कुछ चिन्हों के रूप समान होने के कारण भ्रम उत्पन्न करते हैं, यथा ध अध। चौथा कुछ ऐसे भी चिन्ह प्रयुक्त होते हैं जिनका उच्चारण न तो आज हिंदी में हो पाया है और नहीं उनसे संबंधित ध्वनियां हिंदी में है, यथा री री ली ली और श। पांचवा कतिपय संयुक्त ध्वनि चिन्ह अनावश्यक हैं, यथा कछ त्र ज्ञ। छठवा र के अनेक रूप हैं, जैसे राम, प्रकाश, राष्ट्र, कृष्ण, धर्म। सातवा संयुक्त व्यंजनों की लिखावट भ्रम उत्पन्न करती है, यथा पर्ची में र अच के पश्चात लिखा जाता है परंतु उच्चारित च के पहले होता है। अठवा उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की मात्राएं व्यंजनों के पश्चात लगनी चाहिए किंतु वे आगे पीछे नीचे और ऊपर लगती हैं, यथा जिस सीमा, कुछ, चूहा, जैसा, देश, मोर आदि। नौवा स्वर के लिपि चिन्ह के अतिरिक्त मात्रा चिन्हों का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए कठिनाई उत्पन्न कर देता है जो हिंदी सीख रहे हैं, वे यह नहीं समझ पाते कि कहाँ स्वर चिन्ह का प्रयोग किया जाए और कहाँ स्वर के बदले उसकी मात्रा का चिन्ह प्रयोग में लाया जाए। देवनागरी लिपि में सुधार के प्रयास। देवनागरी लिपि में सुधार करने की ओर सर्वप्रथम बम्बई के विद्वानों का ध्यान गया और महादेव गोविंद रानाडे ने एक सुधार की योजना तैयार की। तदनंतर महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे ने एक लिपि सुधार समिति का गठन किया और मराठी साहित्य सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशन में इस प्रश्न पर विचार विमर्श करके एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। लोकमान्य तिलक ने 1904 में अपने पत्र केसरी में इस सुधार की चर्चा की और 1926 तक उन्होंने टाइपों में छटाई करते करते 190 टाइपों का एक फॉन्ट निर्मित कराया जो तिलक टाइप के नाम से प्रसिद्ध है। इसके उपरांत वीर सावरकर, महात्मा गांधी, राहुल सांकृत्यायन, विनोबा भावे तथा काका कल्लेलकर ने भी इस लिपि को सरल एवं सुगम बनाने का प्रयास किया। इसके बारे में हरिजन में काका कल्लेलकर का एक लेख छपा। सुझाव यह था कि अ पर मात्राएं लगाकर सभी स्वरों की जानकारी कराई जा सकती है, जैसे अ आ ई ई उ ए आए अंग अह आदि। महात्मा गांधी ने इसे पूर्ण रूप से स्वीकृत किया था। इसी कारण यह लिपि काका कल्लेलकर के द्वारा राष्ट्रभाषा परिषद, वर्धा के पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं आदि में प्रचलित हुई। इतना ही नहीं, विनोबा जी ने भी अपने लोक नागरी के माध्यम से इस सुधार के लिए जनमत को जागृत करने का कार्य किया था। उस समय गुजराती में तो एक सुधार हुआ जिससे उसमें से वर्णों के ऊपर से सिरोर खाएं हटा दी गई। इसका प्रभाव देवनागरी लिपि पर भी पड़ा और बहुत से लोग सिरोरेखाहीन देवनागरी लिपि लिखने लगे। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का मत था कि अंग के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए, जैसे अंक मंच नहीं। डॉक्टर गोरख प्रसाद मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिने हाथ रखने के पक्ष में थे। काशी के श्रीनिवास का मत था कि महाप्राण ध्वनियाँ हटा दी जाएं और उनकी जगह अल्प प्राण के पैर में कोई चिन्ह उ जैसा लगा दिया जाए। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। इसने एक समिति का गठन किया। इसकी प्रथम बैठक 5 अक्टूबर 1941 को हुई। इस समिति ने सर्वप्रथम सुव्यवस्थित ढंग से लिपि सुधार पर विचार किया। उसने जो सुझाव दिए थे वे इस प्रकार है। पहली, उ बड़ा उ ए आए की मात्राओं अनुस्वार तथा रेफ को ऊपर या नीचे न रखकर उच्चारण क्रम से अलग रखना चाहिए। दूसरा, हस्व ई की मात्रा को भी व्यंजन के आगे लगाया जाए किंतु इसे थोड़ा नीचे से बाईं ओर मोड़ दिया जाए और दीर्घ बड़ी की मात्रा में नीचे से थोड़ा दाईं ओर मोड़ दिया जाए। तीसरा, संयुक्त अक्षरों में आधे अक्षर को आधे रूप में और पूरे अक्षर को पूरे रूप में लिखा जाए, जैसे प्रेम को आधा प और र उसमें एक का मात्रा और म, भ्रम को आधा भ उसका पूरा र और म, श्रम को आधा स र म आदि। चौथा, ई बड़ी उ उ ए ए के स्थान पर अ में मात्रा लगाकर लिखा जाए, जैसे अ में छोटी ई, अ में बड़ी ई, अ में छोटा ऊ, अ में बड़ा ऊ, अ में ए के मात्रा ए और अ में औ के मात्रा औ आदि। तत्पश्चात 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार ने आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में एक लिपि सुधार समिति का गठन किया। इस समिति ने पूर्ववर्ती सभी सुझावों का अध्ययन करके अपनी ये निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए। पहला सुझाव उन्होंने जो दिया वो यह है कि अ की 12 खड़ी भ्रामक है। दूसरा, मात्राएं यथास्थान बनी रहे किंतु उन्हें थोड़ा दाहिनी ओर हटाकर रखा जाए। तीसरा, अनुस्वार पंचम वर्ण की जगह सर्वत्र फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाए। चौथा, विविध अक्षरों में से अ, झ, झ, ध, भ, आ, कस, त्र, सर, द को रखा जाए और अ, झ, ध, भ, कछ, त्र, ज्ञा, स्त्र, ध आदि को निकाल दिया जाए। पांचवा, पाई वाले व्यंजनों को छोड़कर संयोग में हलंत चिन्ह लगाया जाए। छठवा, क को वर्णमाला में स्थान दिया जाए। 1965 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्य प्रदेशों की सरकार की प्रतिनिधियों और विद्वानों की गोष्ठी में इन सुझावों को थोड़ा हेर फेर के साथ स्वीकार कर लिया। इसके अतिरिक्त इस गोष्ठी में हस्व छोटी की मात्रा को थोड़ा छोटी रूप में लिखने तथा ख को मिलाकर लिखने का निर्णय किया गया। तत्पश्चात 1953 में डॉक्टर राधा कृष्णन की अध्यक्षता में एक परिषद की बैठक लखनऊ में हुई, जिसमें अनेक प्रांतों के मुख्यमंत्री तथा शिक्षा मंत्री, अनेक भाषा शास्त्री एवं भाषाविद एकत्र हुए और उन्होंने लिपि संबंधी अपने निम्नलिखित सुझाव दिए। पहला, ह्रस्व छोटी ई की मात्रा छोटी ई ख ध भ कछ के स्थान पर छोटी सी बड़ी, बड़ी ई की मात्रा मिला हुआ ख ध भ और छ अपनाया जाए। दूसरा, संयुक्त वर्णों के स्वतंत्र चिन्हों क कछ तर ज्ञा सॉरी क कछ तर स्त्र आदि को छोड़कर शेष वर्णों को मिलाकर ही लिखा जाए, जैसे कर आधा क स आधा तर आधा स्वर आदि। इस प्रकार देवनागरी लिपि में सुधार हेतु समय समय पर सुझाव एवं प्रस्ताव होते रहे, जो इसकी वैज्ञानिकता में सहायक सिद्ध हुए। सरकार ने इस ओर काफ़ी ध्यान भी दिया। अ का समय सबसे ज़्यादा हुआ है। इसके अतिरिक्त इस लिपि में अनेक ऐसे चिन्हों को भी अपना लिया गया है जो इससे पहले नहीं थे, जैसे आ क्वेश्चन में डॉक्टर आदि। इसके अतिरिक्त यदि इस लिपि में मराठी ल के साथ साथ ह्रस्व ए उ और को और मिला दिया जाए तो यह और अधिक वैज्ञानिक एवं उपयोगी बनाई जा सकती है। इस प्रकार यह चैप्टर समाप्त होता है।